विश्व दर्पण। श्रोताओं, कार्यक्रम विश्व दर्पण में आपका स्वागत है। मैं हूं अहमद अब्बास। कार्यक्रम में आज हमारी चर्चा का विषय है कतर की राजधानी दोहा में शुरू होने वाली बातचीत। गत मंगलवार से कतर की राजधानी दोहा में ईरान और अमेरिका के बीच अप्रत्यक्ष बातचीत शुरू हो गई है। इस बातचीत में यूरोपीय संघ की विदेश नीति के उप प्रभारी एनरिक मोरा की मध्यस्थता जारी है। उनका कहना है कि बातचीत उन बिंदुओं पर केंद्रित है जो परमाणु समझौते की बहाली की राह में रुकावट बन रहे थे और जिनके चलते वियना में सहमति नहीं बन पाई थी। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि हमें ये उम्मीद है कि सार्थक नतीजे निकलेंगे और कतर इस तरह का वातावरण बनाने की कोशिश कर रहा है कि वार्ता किसी नतीजे पर पहुंच जाए। एक सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका और यूरोपीय देश इस समय बातचीत क्यों शुरू करना चाहते थे। जोसेफ बोरेल इस वार्ता के बारे में उत्साहित नजर आते थे। जोसेफ बोरेल यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी हैं और वो परमाणु वार्ता के कन्वीनर के रूप में काम करते रहे हैं। उनका कहना था कि बातचीत बहुत जल्द शुरू होने वाली है। ये बात उन्होंने वार्ता शुरू होने से ठीक पहले कही थी और काफी उत्साहित नजर आ रहे थे।
In the coming days, I'm saying the coming days, I mean immediately, we will restart the discussions. Stop for the last three months. That's a good news, and let's hope that this will bring the JCPOA again on track.
बोरेल का कहना था कि वार्ता में बने गतिरोध को खत्म करना उनका ध्येय था और इसीलिए उन्होंने तेहरान की यात्रा की थी।
My visit has a one main objective. It was to break the current dynamic of escalation and to break the stalemate of the negotiations on the JCPOA. It was of paramount importance to give a new momentum to bring the JCPOA on track. On my request, you invited me to come and discuss deeply of the reasons that has created this stalemate, and I am very happy, as the minister has said, and thank you for that, minister, that we will resume the talks on the JCPOA on the coming days.
मगर टीकाकारों की बात की जाए तो वे कुछ विषयों की तरफ इशारा करते हैं। टीकाकारों का कहना है कि यूक्रेन जंग की वजह से दुनिया भर में, यहाँ तक कि पश्चिमी देशों में, ऊर्जा का संकट गंभीर रूप धारण कर चुका है, जिसका असर इन देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ रहा है। इन हालात में पश्चिम खुद को दबाव से बाहर निकालने और बाजार में ईरान के तेल व गैस की सप्लाई का रास्ता खोलने के लिए अपनी नीति बदल रहा है, ताकि पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला दबाव कुछ कम हो जाए। बारबरा स्लेविन अमेरिका की जानी मानी टीकाकार और यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। अमेरिकी विदेश नीति पर उनकी गहरी नजर है। उनका कहना है कि दोहा में शुरू हुई वार्ता में इस बात की संभावना ज्यादा है कि समझौता हो जाए।
I always like to be optimistic. I'm doing my best to be optimistic, but this has been a very tough negotiation, and I think the Iranians still have a lot of reservations about returning to an agreement that may not outlast the Biden administration. So they need a lot of persuading, they need a lot of coaxing. And the Europeans, of course, have been acting as intermediaries and doing a good job. But I think the introduction of one of Iran's most important neighbors is a very good sign. Now, in the past, Oman has sort of fulfilled that role. It has been a venue for back channel talks between the United States and Iran. But this is not back channel. This is announced. And of course, Qatar has been encouraging Iran to return to compliance with the agreement. I would bet that there are some economic sweeteners that are being discussed that perhaps Qatar can provide to Iran. that might function as a sort of guarantee that Iran will benefit from this agreement, because Iran has been insisting on a guarantee that that it will, you know, see tangible economic benefits from returning. So, look, it's good that they're back. As you pointed out, the talks have been stalled since mid-March, and you know, if anything is going to happen, now is a good time while there are still a couple of years left in the Biden administration.
बारबरा का मानना है कि अगर ईरान से समझौता हो जाता है तो इससे अमेरिका में बाइडेन सरकार को फायदा होगा, इसलिए भी अमेरिकी सरकार कोशिश में है कि ईरान के साथ समझौता हो जाए।
I think this is a perfect time for Biden, you know, in the middle of the summer to you know, revive this agreement. It'll have an immediate positive effect on gas prices in this country and could help him actually in the midterms. So I see a lot of positives on both sides, but they have to massage the narrative.
इस्लामी गणतंत्र ईरान की बात की जाए तो ईरान शुरू से कहता आ रहा है कि वो बातचीत के पक्ष में है, लेकिन वो ऐसी बातचीत चाहता है जिसका नतीजा निकले। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने जोसेफ बोरेल की तेहरान यात्रा के दौरान ही ऐलान कर दिया था कि वार्ता जल्द शुरू होने जा रही है, मगर उन्होंने ये भी कह दिया था कि वार्ता का मकसद ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाना है और ईरान उसी वार्ता में दिलचस्पी लेगा जिसका कोई नतीजा निकले।
जमहूरी इस्लामी ईरान व तरफ های دیگر برای لغو تحریم ها هست।
विश दर्पण। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की नब्ज टटोलकर विश्व भर में होने वाले परिवर्तनों की तह तक जाने वाला कार्यक्रम विश्व दर्पण। हर हफ्ते सोमवार को
जहां तक बातचीत का नतीजा निकलने की संभावना का सवाल है तो अमरीकी टीकाकार बारबरा का कहना है कि ये समय उचित है, इसमें समझौता हो सकता है। बारबरा इशारा करती हैं कि परमाणु समझौते के लिए ये बड़ा उचित समय है क्योंकि इसराइल में राजनीतिक संकट है और वहां कोई सरकार नहीं है, केयरटेकर सरकार परमाणु डील का विरोध नहीं कर पाएगी।
I think the timing is perfect, because the Israeli government is going to be led by a caretaker. They're having elections in the fall. And so, yeah, Bibi Netanyahu will, you know, scream and yell and hold his breath till his face turns blue, but he can't stop this. And in fact, there's a lot of debate in Israel. A lot of members of the security establishment support a return. And we have less visibility now. The Iranians have turned off cameras that the IAEA had installed. So, you know, the longer this goes on, the less we know about what they're up to. It really is in the interests of everyone to put this back into place. So again, it's summer. You know what happens in the summer. People think about other things.
भारत के वरिष्ठ टीकाकार डॉक्टर अर्शी खान काफी पहले अपनी एक टिप्पणी में ईरान की नीतियों की प्रशंसा करते हुए कह चुके हैं कि अमेरिका समस्या खड़ी करता है और अमेरिका भी इसराइल की वजह से समस्या उत्पन्न करता है।
ईरान की जो डिप्लोमेसी है, मैंने पहले भी कहा था कि ईरान ने ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी को और पोटेंशियलिटी को पूरे दुनिया में दिखा दिया कि ये डिप्लोमेटिकली वर्ल्ड के किसी भी पावर से इंडिविजुअली फर्दन या इज्तिमाही तौर पे ये डील कर सकता है। ये ईरान ने दिखाया। आपने देखा कि 2003 से जब 2003 में बात आई थी एडिशनल प्रोटोकॉल IAEA के तहत, तो उस वक्त से ईरान जो है वो जूझ रहा है, ईरान जो है वो स्ट्रगल कर रहा है, खास करके अपने डिग्निफाइड सर्वाइवल के लिए और डेवलपमेंट के लिए। और पूरी तरह से ये पीछे पड़े हुए हैं और मुसलसल ईरान को नुकसान पहुँचाए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बावजूद तमाम इन चीज़ों के, रुकावटों के, ईरान जो है वो अपने को सस्टेन किया है। ईरान ने कई तरह से अपने रीजन में अपनी चीज़ों को स्टेबल किया है और मजबूती से अपने आप को संभाला है। तो ये तो ईरान, और ईरान की ये भी पॉलिसी रही कि नेचुरली एक ईरान एक काफ़ी पावरफुल कंट्री है और ज्योग्राफिकल लेवल पे या टेरिटोरियल लेवल पे ईरान एक बहुत बड़ा कंट्री है और ईरान की एक अपनी हिस्ट्री है, इसका अपना एक कल्चर ऑफ डिप्लोमेसी है और इसके अपने स्ट्रेटजिक इंटरेस्ट हैं। और ईरान की ये भी पॉलिसी रही कि वो मिडल ईस्ट में ज़्यादा न उलझना चाहता है ना किसी को उलझाना चाहता है।
अमरीकी टीकाकार बारबरा का कहना है कि इस समझौते का सऊदी अरब और इमारात भी विरोध नहीं करेंगे क्योंकि ये उनके भी फायदे में है। उनका भी मानना है कि ईरान इलाके का मजबूत देश है और इलाके के दूसरे देश चाहेंगे कि ईरान के साथ उनका व्यापार हो।
You know, they are having bilateral talks. The UAE and Iran certainly have many agreements, and now the Saudis and the Iranians have been talking as well. And they should really reach an agreement to not interfere in each other's internal affairs. This is something I think that would be very useful. They can also have broader discussions about non-proliferation. There's been some discussion about a nuclear weapons-free Persian Gulf. We can't get a WMD-free Middle East because of Israel.
वार्ता के लिए जहां एक तरफ विश्व में बड़ी ऊर्जा मंडियों की हालत की बात की जा रही है, वहीं एक बात यह भी हो रही है कि ईरान क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में बहुत कामयाबी से आगे बढ़ा है। ईरान ने ट्रांजिट की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया है। विदेश मंत्री हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोफ की ईरान यात्रा के मौके पर संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जिक्र किया कि रूस का माल ईरान के रास्ते भारत पहुंचा।
اولین محموله از روسیه به هند از مسیر کریدور شمال و جنوب انتقال پیدا کرد. این یک تجربه موفق بود.
विदेश मंत्री ने जिस कंसाइनमेंट की बात की उस पर भारत में भी बड़ी चर्चा रही और इसे नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा गया। यही नहीं, ईरान सेंट्रल एशिया के मुल्कों को तुर्की के रास्ते यूरोप से जोड़ने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वहीं रूस और चीन के बीच व्यापार में भी ईरान की भूमिका बढ़ रही है। इससे ये समझा जा सकता है कि ईरान वर्तमान हालात में किस मजबूती के साथ अपनी अर्थव्यवस्था की बुनियादें सुदृढ़ कर रहा है। अमरीका और अन्य पश्चिमी देशों को भी ये बात अच्छी तरह मालूम है और उनकी समझ में आ चुका है कि पाबंदियों से ईरान को मजबूर नहीं किया जा सकता, बल्कि ईरान अपना आर्थिक विकास हर हाल में जारी रखेगा। यही ईरान की मजबूती का राज भी है। ईरान ने जहां एक तरफ इस बात पर जोर दिया है कि वो वार्ता की मेज से हटा नहीं है और न ही हटेगा और लंबित मुद्दों का कूटनीतिक बातचीत से समाधान खोजने का समर्थन करता रहेगा, वहीं दूसरी ओर ईरान ने यह भी साफ कर दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था के मूल मुद्दों को विदेश की नीतियों और समझौतों पर निर्भर नहीं किया जा सकता। इसी सोच के तहत ईरान ने क्षेत्रीय सहयोग की नीति को काफ़ी गति से आगे बढ़ाया है। यहीं से ईरान की मजबूती और सफलता को समझा जा सकता है। श्रोताओं, कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है।